ओम शांति। आज के वरदान में एक बहुत अच्छी बात और सूक्ष्म बात थी, बोलो कौन सी थी, याद है किसी को? अच्छी बताई हेम सिंह भाई ने, बता दिया, मैं विश्व कल्याणकारी मारी जाए, फीलिंग में आ जाए, हम इसको समा लें अपने अंदर। माता ही सुना उबार जाके, इनका बार बार आ रहा बेचारी का, बच्चे याद कर रहे होंगे, जाओ कहो भाई से सुना है ना, क्यों जाओ बंद करना, उससे आता नहीं होगा कि ऑफ कर दें। कल्याणकारी हैं, क्या हो जाएगा अगर इस फीलिंग को हम बढ़ा दें? इंद्र प्रताप ऐसे ही नाम लिया, कुछ देखो नहीं उसे। क्या होगा? एक बेहद की भावना हो जाएगी। दूसरा बताएं, बहने बताएं, बोलो बोलो, आज चर्चा करनी बहुत अच्छी अच्छी। पॉजिटिव बुद्धि माना, दूसरों के लिए सुभावनाएं हो जाएंगी, किसी से भी बदला लेने की इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि हमें सबका कल्याण करना है। सबका माना प्रकृति सहित। मुझे याद आ गई एक बात, प्रकृति का नाम लेने, आज बाबा की मुरली में एक बहुत सुंदर बात और थी, याद करो आज, स्वीट होने पे मीठे हो जाओ, देवताओं जैसे मीठे। अगर कोई निरंतर याद में भोजन खाए तो ये बहुत बड़ी बहादुरी है, महावीरता है। तो मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सिखाना चाहता हूँ, सीखेंगे तो देना, क्योंकि हम सब जानते हैं याद कितनी रहती है भोजन पे, वो तो बताने की जरूरत नहीं। जब भोजन सामने लेकर बैठें, तो पहले प्रकृति को धन्यवाद दें जिसने हमें ये अन्न प्रदान किया है, फिर बाबा को धन्यवाद दें जो मालिक है, जो हमें ब्रह्मा भोजन खिला रहा है, ठीक है, फिर हम भोजन के लिए सुंदर संकल्प करें, ये भोजन, ये ब्रह्मा भोजन, आपके घर में भी जो भोजन हो उसे भी आप ब्रह्मा भोजन ही समझेंगे, ये ब्रह्मा भोजन मेरे लिए अमृत है, ये मेरे लिए बहुत सुंदर औषधि है, ये मुझे निरोग करेगी, ये मेरे चित्त को शांत करेगा। फिर थोड़ा सा अभ्यास करना, ऊपर से बाबा की किरणें डायरेक्ट भोजन पर पड़ने लगी, और फिर गुड फीलिंग के साथ भोजन को स्वीकार करना, फिर जो जितना याद में रह सके वो अलग बात, पर शुरुआत इस तरह से कर देना। एक मिनट लंबा समय होता है, घर में आप भोजन पर एक कुछ गड़बड़ कर रही है माता जी, लेकिन ये करना है, बहुत अच्छे फायदे होंगे। ये नहीं बैंगन सामने आ गया तो आते ही संकल्प क्या है, नुकसान करेगा, क्या ये काला काला बेगुना आ गया, ये नहीं, ये अमृत है। एक भाई का बहुत अच्छा अनुभव था, यहीं पर मैंने एक क्लास कराई थी, अभी जो शिविर आया था ना, तो उल्लासनगर के सिंधी लोग बहुत थे, तो मैंने संकल्प शक्ति पर ये बात सिखाई, तो एक भाई जो अपना बीके, जो वहां का मुख्य भाई है, उसको दही खाने से एकदम ठंड लग जाती थी, छींक आने लगती थी, नाक बहने लगता था, एलर्जी। उसने उस दिन संकल्प किया, ये दही रायता बना था आजकल, तो उन्हें संकल्प किया ये रायता मेरे लिए अमृत है, और खाया, कुछ भी नहीं हुआ। उसने यहां सुनाया आके सबको कि देखो एक ही संकल्प से कितना बड़ा परिवर्तन हो गया, संकल्पों से हमारा संसार चल रहा है, हम इस बात को बहुत अच्छी तरह जान लें, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति संकल्प शक्ति ही है। उसको हम यूज करें, उसका प्रयोग करें, संकल्प से काम करें बहुत सारे। मुझे एक बात जरूर आपको बतानी है। मैं एक डॉक्टर के पास गया, हॉस्पिटल में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, यहाँ वाले जानते हैं, बहुत फेमस होते जा रहे हैं, वो कुमार हैं डॉक्टर सचिन, बहुत अच्छे योगी हैं, जैसे वरदानी हो गए हैं बाबा के, बहुत अच्छे अच्छे उन्हें उनके ट्रीटमेंट के द्वारा लोगों को हो रहे हैं। तो मुझे बता रहे थे कि हमारे लिए यज्ञ वालों को ठीक करना बड़ा कठिन हो गया है, बाहर के जो आते हैं वो फटाफट ठीक हो जाते हैं। मैंने पूछा क्यों? कहा एक पेशेंट आया अभी, उसको बुखार 99 था केवल, 99, समझते ना बुखार 99 कितना होता है। कहा मेरे सिर पे पट्टी रख दो, पैरों पे ठंडे, डॉक्टर साहब करो जल्दी कुछ। कहा बिल्कुल सहज बात, लेकिन वो हमें इतना परेशान कर रहे कि हम ही इरिटेट हो गए। कहा बाहर का व्यक्ति आया, उसको 103 बुखार था, हमने कहा बस अब ठीक हो जाते हो, ये गोली खा लो। वो दोबारा आया ही नहीं, ठीक हो गए घर भी चला गया एक ही दिन में। कहा बहुत मुश्किल है, ध्यान दें हम अपनी छोटी छोटी बीमारियों के लिए बहुत नाजुक ना बन जाएं, बहुत सेंसिटिव। हाय क्या होगा, मरे हम तो गए लगता है, संगम युग पूरा हो गया हमारा तो, ये सब नहीं। हमारे संकल्पों में बहुत पावर है, संकल्प सुंदर करें आप। मुझे एक और बात याद आ गई, पिछले सीजन में जब विदेशी थे, अब नहीं पिछले साल, मैं डिस्पेंसरी में गया अचानक, तो मैं देख लेता हूँ कौन कौन पेशेंट हैं। तो देखा एक शायद यूके की माता थी गुजराती, बिल्कुल बेहोश। मैंने पूछा डॉक्टर से कि क्या हुआ इसको, बहुत ज्यादा बुखार है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा माना कितना था? 107 तक बेहोश थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो ऐसे ऐसे कर रही थी, मैंने देखा उसको। तो एक बहुत अच्छा प्रयोग है, आप सब करें। तब मैं ये बहुत करता था, अब बहुत दिन से तो मुझे भूला हुआ था, आज याद आया अचानक। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैंने डॉक्टर को ऐसे ही कहा, मैं देख लो इसका बुखार कैसा है, उसको मैंने नहीं बताया। और मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करके उसके हाथ पर ऐसे हाथ रख दिया, मैं बैठ गया उसके पास और मैंने ये काम 3 मिनट तक किया। अब उसने आंख खोली, पूछा कौन है। मैंने कहा, मैंने अपना नाम बताया, वो पहचानती होगी, खुश हो गई। उसका बुखार कहाँ आ गया था? 103 पर। ये बहुत अच्छा तरीका है, राइट हैंड से एनर्जी देना शरीर को, हाथ पे भी रख के दे सकते हैं, मस्तक पे रख के भी दे सकते हैं, बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। उसे होश आ गई बिल्कुल, वो चेतन हो गई एकदम से, और फिर तो आगे थोड़ी ट्रीटमेंट दी, 2 दिन में वो ठीक हो गई। तो हम अपनी शक्तियों को पहचाने। मैं अपने को भी ये बात बार बार याद दिलाता हूं और सबको भी, अपनी शक्तियों को पहचाने। हमारे पास शक्ति है। मैं एक बात बहुत याद दिलाई है क्लास में, आज आपको भी याद दिला देता हूं। पिछले सीजन की पहली मुरली का महावाक्य है, अब से ठीक एक साल पहले अक्टूबर में बाबा आए थे ना, शायद 15-16 को, उसका ही महावाक्य, 20 को उसका महावाक्य है। तुम्हारे पास शक्ति है हर संकल्प को पूरा करने की। इसको स्वीकार करें सभी, इसको इग्नोर न कर दें, टाल न दें ऐसे ही कि ये तो बाबा ऐसे ही कहता रहता है। हमारे पास बहुत शक्तियां हैं, और अगर हम मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास बहुत अच्छा करते हैं तो ये शक्तियां बहुत ज्यादा हैं हमारे पास। हमें ये अभ्यास करना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। ये बाबा का मैसेज था, बहुत पहले का है, वहीं से हमने सीखा। बाबा ने सिखाया था अभ्यास किया करो, मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। पीछे तो पता चल गया कि वो फैलती ही हैं, ये कल्पना नहीं है, वो फैलती ही हैं। अगर हम उस फीलिंग में बैठेंगे तो बहुत सुंदर अनुभूति होगी। तो सभी किसी भी बात में अपने मन को भारी नहीं करेंगे, संकल्प से अच्छा करेंगे। मैं एक अनुभव सुनाऊं, आज का सवेरे का है या कल शाम का है। मुझे किसी ने फोन किया, एक बहन अपने सेंटर अपने जगह ली है और सेंटर बना रही है, तो आज उसका इनॉग्रेशन था, वो फाउंडेशन स्टोन। कल उसने मुझे फोन किया कि एक बड़ा भाई है पास में दूसरे सेंटर पे, उसको भी निमंत्रण दे दूं क्या, वो है थोड़ा टेढ़ा, समझ गए ना, बस इतना ही मैं कहूंगा। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, दे दो, बेचारा खुश तो हो जाएगा कम से कम, न भी आए तो उसको निमंत्रण दो। इन्होंने परसों उसको निमंत्रण दिया, अब वो जी गर्म हो गया और जिसको ये बुला रहे थे उसको फोन कर दिया, वहां नहीं जाना बिल्कुल भी, वो बहने अच्छी नहीं है, उनकी ग्लानी कर दी पूरी। वो एक मेहर मित्तल जी हैं, पंजाब के एक्टर पुराने, वो बीके बन गए हैं, वो पंजाब में बहुत फेमस हैं नॉर्थ इंडिया में, तो उनको जब बहने बुलाती हैं तो भीड़ तो आप ही आ जाती है। मेरे साथ भी दो चार बार रहे वो जब मैं हरियाणा में गया, तो बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन वो भी बहुत अच्छा निकला। उसने कहा भाई जी इन्होंने मुझे तीन बार बुलाया है, मैं दो बार नहीं गया, अब आखिरी बार तो मैं अवश्य जाऊंगा, आगे ध्यान रखूंगा। वो भी आ गया आज। तो मेरे को ना थोड़ा संकल्प चला, मैं अपनी बात बता रहा हूं कि ये कैसे लोग हैं बाबा के बच्चे, कि सेवाओं में सहयोग देने की बजाय विघन डालने में अपनी बहादुरी समझते हैं, है ना। यही मुझे थोड़ा सा संकल्प चला, थोड़ा सा, चार पांच संकल्प चले, तुरंत मुझे ख्याल आया कल की बात है कि नहीं इसे दुआएं दो। बाबा को याद किया और उसको दुआएं भेजी, इसको सद्बुद्धि प्राप्त हो, ये विवेद की बुद्धि प्राप्त कर ले, ये सुखदायी हो जाए। तो मैंने देखा मेरा चित्त शांत हुआ, नहीं तो संकल्प चल रहा था कि बाबा के कार्यों में उसका कुछ जा तो नहीं रहा, लेकिन विघन डालना जैसे उनका कर्तव्य हो गया है। ऐसे बहुत लोग हैं बाबा के यज्ञ में कि वो सहयोग नहीं देंगे, तो उन्हें पता लग जाए कि वहां कोई अच्छा काम हो रहा है तो विघन जरूर डालेंगे कि क्यों हो रहा है, उनका नाम हो जाएगा, हमारा नहीं होगा, हम सीनियर हैं, हमारा नाम होना चाहिए, उनका क्यों हो रहा है। कल की मुरली में तो ये सब था ना, याद है ना। हम स्वयं भी इससे बचेंगे और अपने मन को कहीं भी भारी नहीं करेंगे। किसी भी आत्मा के कारण मन भारी हो रहा हो तो दुआएं दे दो, उसे दस दे दो। बाबा ने कहा है ना, कोई तुम्हें एक बद्दुआ दे तुम उसे दस दुआएं दे दो, तो अपना चित्त भी शांत होगा और उसकी बद्दुआएं हम तक पहुंचेंगी नहीं, वो हमारी दुआएं उसको बीच में काट के नष्ट कर देंगी। अब हम चलते हैं कल की मुरली में। बहुत गुहे बात एक थी, चारों सब्जेक्ट की पहचान तो आज दीदी ने भी रिपीट कराई थी मुरली में, याद है सबको, ज्ञानी माना समझदार, कहीं धोखा न खाने वाले, योगी माना क्लीन और क्लियर बुद्धि, से धारणा वाले डबल लाइट, मेले में भी और झमेले में भी हल्का, बिल्कुल हल्के, और सेवाधारी निमित्त और निर्वाण, जिनमें अहंकार ना हो। बहुत अच्छी बात ये जानने की है। आजकल मैंने सुना तो महादेव सीरियल आ रहा है शिव पुराण पर, मैं तो बहुत कम देख पाता हूँ, मुझे देखने वाले सुना देते हैं अच्छी अच्छी बातें, उसमें एक बात बहुत सुंदर आ गई है, मैं आप सबको भी कहना चाहता हूँ, वो मुझे किसी ने सुना दी और वो सचमुच शिव पुराण है, तो जैसे संगम युग की शिव बाबा की कहानी है सारी, शंकर के रूप में वो दिखाई है बस और कुछ नहीं, पर प्रैक्टिकल में कहानी है। तो राक्षस को शिव ने वरदान दे दिया था, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, राक्षस ने, राक्षस तो राक्षस, भूल से ये कह दिया कि तुम्हारे पुत्र के सिवाय मुझे कोई न मार सके, और शिव को कोई पुत्र नहीं था। उन्हें सोचा शिव तो वैरागी है, तपस्वी है, उसको पुत्र कहां से आएगा। वरदान मांग लिया, वो करने लगा अत्याचार। फिर कार्तिकेय का जन्म हुआ, देवताओं ने रिक्वेस्ट की, वहां दिखा योग बल से कैसे शंकर और पार्वती योग बल का प्रयोग कर रहे हैं, और उससे कार्तिकेय की उत्पत्ति होती है। महादेव जी उसको तैयार कर रहे हैं, तुम्हें ताड़कासुर का वध करना है क्योंकि वो अत्याचार कर रहा है। उससे पूछा जाता, उसके गण पूछते हैं कि आपने ही तो ताड़कासुर को वरदान दिया था, आप बहुत जल्दी राजी हो जाते हो, भोलानाथ हो ना, और किसी को वरदान दे बैठते हो। ये बात ब्रह्मा जी के लिए भी है, किसी से भी खुश हो गए, वरदान दे दिया, तथास्तु, जो उसने मांगा। अहिरावण को भी दे दिया, वो कुंभकर्ण को भी दे दिया था, वो इंद्रासन मांग रहा था ना, वो तो देवताएं परेशान हो गए तो सरस्वती को भेज दिया था ना, इसकी जीभ पर बैठ जाओ, उसने इंद्रासन की जगह निद्रासन बोल दिया, तथास्तु। तो ये शास्त्रों की कहानी है तो बड़ी वंडरफुल। तो उसमें महादेव कह रहे हैं कि मेरे दिए हुए वरदान को यदि कोई मिसयूज करता है, यदि किसी में अहंकार आ जाता है, तो मैं ही उसके विनाश का उपाय निश्चित कर देता हूं। हम देखते हैं हमारे यहां भी कईयों को ब्रह्मा जी ने खुश होकर वरदान दे दिए थे, अब वो दूसरों को परेशान कर रहे हैं। खुल के बता रहा हूं मैं ये बात, किसी को बुरा ना लगे, कर रहे थे, कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं उनसे वो शक्तियां छीन ली गई हैं, अब वो दुखी हैं। ये हम प्रैक्टिकल देख, मैं जानता हूं ऐसे कई लोगों को, आप नहीं जानते उनको, मुझे पता है। ब्रह्मा जी को पनीर खिला दिया उन्होंने, बहुत प्यार करते थे, ब्रह्मा जी राजी हो गया, अच्छा था अस्तु बच्चे, लेकिन उन्होंने सोचा शक्तियां तो हमारे पास आ गई, कर लो जो चाहिए, दुरुपयोग किया, दूसरों को तंग किया, अब उनकी दुर्गति है। बहुत अच्छी बात कही वहां, परमात्म वरदानों को जो मनुष्य विनम्रता पूर्वक स्वीकार करता है, जो उनको जन कल्याण के कार्य में लगाता है, वही वरदान फलीभूत होते हैं। जो उनका मिसयूज करता है, जो उसको पाकर अहंकारी हो जाता है, उनकी वो शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। बहुत अच्छी बात कही हिंदी में, अहंकारी व्यक्ति अपनी दृष्टि में अच्छा, दूसरों की दृष्टि में ओछा होता है। ओछा समझते हैं ना, गिरा हुआ। तो हम इस बात का ध्यान देंगे। कल की मुरली में ये बात बहुत सूक्ष्मता से थी, मैं सोचता हूं हम कितने भाग्यवान हैं। कौन पढ़ाता है हमें, कितने सरल शब्दों में गुह्यतम रहस्य बता देता है, ऐसे ही हल्के हल्के, उसके लिए तो वो गुह्य है नहीं, संसार के लिए बहुत गुह्य हैं। मैं सोच रहा था बाबा ने अहंकार के लिए, निमित्त भाव के लिए, निर्माण चित्त होने के लिए कितने सुंदर सुंदर बातें कही। चार पांच साल पहले कहा, चाहे कोई रात दिन सेवाओं में भागदौड़ करे, सब कुछ लगा दे, लेकिन यदि निमित्त भाव, निर्माण चित्त, तीसरा नहीं, निर्मल वाणी नहीं है, तो केवल 5% ही जमा होगा, जीरो हो गया। कितनी गुह्य बातें हैं, लेकिन जो इनको स्वीकार करे, जो इन पे चिंतन करके इसे अपने जीवन में लाए। कल की मुरली में कितनी अच्छी थी, स्टूडेंट क्या क्या सोचते हैं, इतनी सेवा की, टीचर ने पानी भी नहीं पूछा। अच्छा, पानी पूछना छोटी सी बात है, अगर पानी पिला भी देती तो खुश हो जाते, पानी तो आप ही भी पिया जा सकता है ना, लेकिन क्या होता है इस चिंतन से, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, सेवा का बल समाप्त हो जाता है। टीचर्स को भी क्या क्या होता है वो सबने सुना, तब बहुत होता था ये। हमारी कॉन्फ्रेंस ही शुरू हुई, मैंने पहले भी सुनाई ये बात, तो लोग सोचते थे अरे सारी मेहनत हमने की, मधुबन वाले सोचते थे, हम भी सोचते थे सारी मेहनत हमने की, रात दिन खाना भी हमने बनाया, लोगों ने स्टेज तैयार की, कॉन्फ्रेंस का सब कुछ किया, और कोई आगे 15 मिनट भाषण कर दिया दिल्ली से, उसके फोटो आ रहे हैं, अखबारों में छप रहा है, नाम उसका हो रहा है, हमें कोई पूछता ही नहीं। तो बाबा ने मुरली चलाई। फिर 2-3 दिन बाद जब बाबा आए कि झाड़ू लगाने वालों का, बर्तन साफ करने वालों का, रोटी बनाने वाली माताओं का उतना ही महत्व है। कहा अगर रोटी न मिलती उन्हें तो कॉन्फ्रेंस होती? कहा सबका महत्व है। सबसे ज्यादा महिमा मधुबन में लोग करते थे सफाई कर। तो बाबा ने कहा अगर सफाई न होती तो ये महिमा होती? ये किसका कार्य है? सबने मिला जुला संगठित प्रयास किया ना। लेकिन इन सब संकल्पों से क्या होता है? व्यर्थ संकल्प चलने से हमारी आंतरिक सुंदरता समाप्त हो जाती है। बाबा का काम हुआ, बहुतों को संदेश मिला, अखबारों में छपा, सब सुंदर हुआ, चारों ओर आनंद छाया हुआ है, और व्यर्थ सोचने वाले दुखी हो रहे हैं। फायदा तो कुछ नहीं ना। इसलिए बाबा हमें सिखाते हैं, बहुत सुंदर और बड़ी धारणा है हमारी, निष्काम भाव। जो इस बात को समझ ले, बाबा ने 2 चीजें कही हैं, संपूर्णता के समीपता के लक्षण होंगे निष्काम भाव, निर्दोष दृष्टि। इस ड्रामा में किसी का कोई दोष नहीं, जो कुछ हो रहा है परफेक्ट, सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, यहाँ किसी का कोई दोष नहीं। ये 2 स्थिति आ जाएंगी। आधी श्रीमद् भगवत गीता निष्काम कर्म योग पर लिखी गई है, आधी, जिसमें इसकी बहुत गुह्य बातों का वर्णन किया गया। लोग आजकल तो गीता न जानते न पढ़ते, देखी भी नहीं होगी। माताओं ने देखी गीता कभी? किस किस ने देखी? हाथ उठाना। देखो माताएं तो कई हैं, मैं तो सोचा कोई नहीं होगी। पढ़ी किस किस ने? पढ़ी पढ़ी, चलो अच्छा है, क्योंकि मैं सोचता हूं कि हम गीता के भगवान का बाबा ने बहुत दिया ना, और ब्राह्मणों ने गीता नहीं देखी। कोई पूछ ले, देखी तुमने? सन्यासी से हम डिस्कस कर रहे हो, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, और वो पूछ ले भाई गीता पढ़ी है कभी, और हम कहें ना देखी ना पढ़ी, तो क्या वो कहेगा? तुम्हें अधिकार ही नहीं है इस पे चर्चा करने का। गीता में आधा निष्काम कर्म योग की चर्चा है, यही है। सन्यास के भी 3 लक्षण, वैराग के भी 3 लक्षण, त्याग के भी 3 लक्षण, दान के भी 3 लक्षण, 3 भेद, सतो रजो तमो, अलग अलग। जो निश्चय में था ना कल, वही समर्पणता में है। हमारे पास जब लोग समर्पण होने आते थे, यहाँ वाले बैठे हैं, मैं उनसे पूछता था तुम क्यों समर्पित होना चाहते हो? कोई कहते तेरे बहुत झंझट है दुनिया में, क्या करेंगे रह के माँ, इसलिए समर्पित हो जाएं। कोई कहते थे माँ बाप बहुत तंग कर रहे भाई शादी के लिए, हम तो भाग आते हैं इधर, समर्पित हो जाए सुखी हो जाएंगे। मैं कहता था आप लोगों का समर्पित जीवन सफल नहीं होगा। क्यों समझते हैं? क्यों? जो व्यक्ति महान लक्ष्य से ज्ञान युक्त वैराग्य के साथ समर्पित नहीं होते, उनका समर्पित जीवन वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए। वो खुश हो जाते हैं, हम आगे भी बाहर से बाहर नौकरी करते उससे तो अच्छा, यहाँ सेवा कर रहे हैं, ये बहुत छोटी फीलिंग हो गई। महान लक्ष्य के साथ, तो सन्यास के लिए भी ये है। कुछ लोग सन्यासी बन गए, अरे घर में बहुत झंझट है, कर्ज बहुत हो गया, भाग गए। ऐसे बहुत सन्यासी बने हैं, कर्ज बहुत हो गया, अब कहां से देंगे, रोज मांगने वाले आ रहे, भागो, सन्यासी बन गए। कोई सन्यासी बने किसी दुख के कारण, बहुत आपदाएं आ गई जीवन में, परेशानियां बहुत हो गई, सन्यास ले लिया। दोनों ही सफल नहीं होते। लेकिन जो ज्ञान युक्त वैराग्य के साथ सन्यास लेते हैं, जो महान लक्ष्य के साथ सन्यास लेते हैं, वो सफल हो जाते हैं। ये बात तो मैं ऐसे ही आपको बताई। तो हम सभी कल की मुरली के आधार से इस गुह्यता को ध्यान में देंगे, निमित्त निर्माण, डबल लाइट, क्लीन और क्लियर, और बहुत समझदार, चारों सब्जेक्ट की निशानी। मैं आपका ध्यान कल की उस सबसे गुह्य बात पर दिलाना चाहता हूँ। सोचा तो मैं ये था उन तीन पे ही चिंतन करेंगे आज। फाइनल बातों के आधार से आउट हो गए। पहला, कितनों को योग्य बनाया। दूसरा, कितनों को सुख दिया। तीसरा, स्वयं कितने शक्तिशाली होकर रहे। तीनों चीजों पर सभी को गौर करना है। कितनों को योग्य बनाया। जो योगी है वही योग्य है। योग से सब योग्यताएं आ जाती, ज्ञान का भी साथ हो, लेकिन जो योगी है वही योग्य है। उनमें निरहंकारिता आ जाएगी, उनके विचार महान होते जाएंगे, वो सरल चित्त होते ही जाएंगे, उनकी प्योरिटी बढ़ेगी और अनेक सद्गुण जीवन में आप ही आते जाएंगे। दूसरों को योगी बनाना, उनको गुणवान बनाना, ये बहुत बड़ी सेवा है। देखिए, हमारे सब सेंटर हैं, बहुत सारी टीचर बहने हैं, 14-15 हजार समर्पित भाई बहने हैं यज्ञ में, सभी सेवा कर रहे हैं। मैं बहुत जगह जाता हूं, मैं देखता हूं जो स्थिति टीचर की वही स्थिति सब स्टूडेंट्स की। अगर टीचर अमृत वेले सोती है तो वो भी सब सोते हैं। उन्हें पता नहीं हमारी टीचर सोती है, उन्हें पता नहीं है, पर वो भी सोते हैं। ये बिल्कुल साफ साफ दिखता है। टीचर अंतर्मुखी है, सब स्टूडेंट्स अंतर्मुखी हैं। टीचर योग युक्त है तो सब में योग की लहर दिखाई देती है। योग्य बनाना दूसरों को, योगी बनाना, ये बहुत बड़ी सेवा है। हजारों लाखों को संदेश देना एक तरफ और 5-10 को योग्य बनाना दूसरी तरफ, बराबर हो जाएगा। दूसरा, कितनों को सुख दिया, इस पर तो सभी चिंतन करेंगे, लेकिन कितना शक्तिशाली बन कर रहे। बहुतों ने जीवन में सुख कम लोगों को दिया है, कष्ट ज्यादा लोगों को दिया है, और सबसे बड़ी समस्या ये कि उन्हें ये पता ही नहीं कि हम सुख नहीं देते। वो अपने को राइट समझते हैं, हमने इसको ये बोला, ठीक बोला, बोलना ही चाहिए, नहीं बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा, ये सुधरेंगे कैसे, काम बिगड़ जाएगा, यक्का नुकसान हो जाएगा, इसलिए हमें ये ऐसा बोलना ही चाहिए। वो अपने को ठीक समझते हैं, लेकिन उनके ठीक समझने से क्या उनकी स्थिति ठीक रहेगी? स्थिति पे तो असर आएगा। दूसरों को बुरा बोलकर बोलने वाला कितना भी खुश हो जाए, उसका आंतरिक सुख नष्ट होना ही है। हम कितने शक्तिशाली बनकर रहे। देखिए, माया के सामने और परिस्थितियों के सामने हम कितने शक्तिशाली बनकर रहते हैं। शक्तिशाली आत्मा की निशानी होगी नहीं, अचल अडोल, हिलने डुलने वाले नहीं। ये नहीं कोई छोटी सी बात आ गई और परेशान हो रहे हैं, ये नहीं, किसने जरा से शब्द बोल दिए और दुखी हो गए। कल की मुरली में बहुत सुंदर शब्द थे, तुम सर्वशक्तिमान के संतान हो, अगर तुम परेशान रहोगे तो कौन मानेगा तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। मैं एक छोटा सा हंसी का उदाहरण इसमें लोगों को देता हूँ कि एक शेर का बच्चा क्या होगा, शेर ही होगा ना। लेकिन शेर का बच्चा जरा जंगल में दूर निकल गया, दो कुत्तों ने उसे भौंकना शुरू किया, शेर का बच्चा डर गया, आगे आगे बच्चा भाग रहा, पीछे पीछे कुत्ते तो पीछे भागेंगे ना, उनको बड़ा मजा आता है कोई भाग रहा हो, वो पीछा करते हैं। अब पहुंच गए शेर के पास, शेर ने देखा मेरा बच्चा और कुत्तों से डर के भाग रहा है, दो लगाए, तो मेरा बच्चा कैसा है। तो उसे अकल आई कि अरे मैं तो शेर हूं, इनकी तरफ एक बार देख लेता तो कुत्ते भाग जाते 100 कोस दूर, लेकिन मैं डर के भाग गया। तो सर्वशक्तिवान के बच्चे भी अगर डर जाए मच्छरों से, छोटे संकल्प क्या हैं, मच्छर ही तो हैं, लेकिन मच्छर तंग बहुत कर देते हैं, एक शेर को भी अगर मच्छर लग जाए तो बेचारे के पास मच्छरदानी तो होती नहीं, परेशान हो जाएगा ना बहुत। हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं, हमें ऐसा शक्तिशाली बनकर रहना है कि परिस्थितियां और माया हमसे भयभीत हो। आप ये बाबा के महावाक्य सुनते होंगे मुरलियों में, अगर तुम सर्वशक्तिवान से कंबाइंड होकर रहो तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। पीछे आ गया ये महावाक्य। तो अगर हम शक्तिशाली बनकर रहते हैं तो हमारे वाइब्रेशन से परिस्थितियों को बदल देते हैं, माया को भी नष्ट कर देते हैं। तो इन तीनों बातों पर सभी बहुत अच्छी तरह चिंतन करेंगे, चिंतन माना अपने में इनको लाएंगे। हमें सुखदायी बनना है, हमें बहुत पावरफुल बनना है। परिस्थितियां दिनों दिन बढ़ती जाएंगी। क्या सोचती हैं माताएं, बढ़ेंगी या घटेंगी? विनाश आ रहा है, महाविनाश। और विनाश कोई एक रात में नहीं हो जाएगा कि रात को सोएंगे सवेरे उठे ही नहीं, विनाश हो गया, घर चले गए, ऐसा नहीं होगा। विनाश से पहले ये धरा क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी? धर्मराजपुरी, शमशान भी और फिर सुख संवतन भी। तो धर्मराजपुरी माना यहां सजाएं बहुत होंगी लोगों को, अभी मिल रही हैं। अब हमारे पास जो ज्ञान लेने लोग आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि उनके जीवन में समस्याएं बहुत होती जा रही हैं। मुझे तो बहुत फोन आते हैं, 6 मास से ज्ञान में आए ये समस्या है, 2 मास से ज्ञान में है ये समस्या है, 1 मास से ज्ञान में है ये समस्या है, ज्ञान में आने से और बढ़ गई है, क्या करूं? ये नई समस्या। एक बहन बॉम्बे की, कल परसों से फोन आ रहा, दूसरी माताएं फोन करा रही कि ये कन्या ज्ञान में आई है। ज्ञान में आई थी 4-5 मास पहले, हाथ ऐसे ऐसे थोड़े हिलते थे, अब 6 मास में पूरा शरीर हिलने लगा है, न खा सकती, खा नहीं सकती, ज्ञान में कोई नहीं है। ये ज्ञान में निकल गई तो परिवार वाले और एंटी। देखो लौकिक परिवार कैसे होते हैं, आप विचार करो। मैंने उनको कहा हमारे यहां मैग्नेट थेरेपी है, उसको कहो ना कोई लेके आए। कहा सब कहते हैं हम क्या करेंगे, जाए इसको जहां जाना है। ये वो परिवार हैं जिनसे मनुष्य का बहुत मोह रहता है, जिनके पीछे वो अपनी जान लगा देता है। ये आजकल परिवारों का हाल है। मेरे को कहा इसे फोन से बात तो कर लो, अब हो ही नहीं रही उससे बात। आज ही की मैंने उससे, मैंने उसको कहा फिर जिस माता ने बात की कि भाई तुम मदद करो इसे, यहां मैंने मैग्नेट वालों से बात की है, वो कहते हैं हमारे यहाँ ऐसे केस ठीक हो जाते हैं। तो ले आओ, बेचारी का कल्याण हो जाए। तो हमारे यहाँ ज्ञान में आजकल लोग इसलिए आ रहे हैं कि समस्याएं अति में हो गई हैं। देवकुल की आत्माओं को आना है, लेकिन कोई ना कोई कारण तो उन्हें लाएगा। हम सभी क्या करेंगे? तो परिस्थितियां विकराल होती जाएंगी। जो श्रेष्ठ योगी हैं, बैठे हैं सभा में, उन्हें अब सोचना है कि अपने वाइब्रेशंस देकर, अपने संकल्पों के द्वारा सबको मदद करनी है, सुख देना है। सब बहने भी तैयार करें अपने को परिस्थितियों में परेशान होने की बजाय, वाइब्रेशंस देकर सुंदर संकल्प करके उन्हें ठीक करना है, बीमारियों में भी उनकी मदद करनी है। आप ये भी संकल्प कर लेंगे ना योग युक्त होके, ठीक हो जाए, मुख से बोल देंगे ना तुम ठीक हो जाओगे, बहुत बल मिल जाएगा। हमारे बोल में, हमारे वाइब्रेशंस में सिद्धि भी है, वो काम करेगी। इसलिए हमें ये नहीं सोचना हम क्या करें। अब जैसे ये केस था, उसका सारा शरीर हिल रहा है, न तो हमें ये सोचना है ठीक नहीं होगी, न हमें ये सोचना है इसने बहुत पाप किए इसलिए इसकी ये दुर्गति तो होनी है, पाप किए तो भोगो, ये भी हमें नहीं सोचना है, भोग तो वो स्वयं ही रहे हैं, हम क्यों सोचें। हमें संकल्प करना है ये ठीक हो जाए, अब ताकि ये बाबा से कुछ प्राप्त कर सकें, ताकि वो योगयुक्त हो सकें, जितना भी अधिकार उनके भाग्य में है वो बाबा से ले सकें। तो सभी जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, संकल्प शक्ति का प्रयोग करते हुए, वाइब्रेशंस देते हुए, अभी से इस फीलिंग को बहुत बढ़ा दें, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, बहुत बढ़ाएंगे, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। पसंद है? इसको बढ़ाते ही हमारा चित्त शुद्ध होने लगेगा, हमारी भावनाएं महान होने लगेंगी। इसको आप चिंतन में लाकर देखो, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, भगवान ने मुझे कहा है तुम विश्व कल्याणकारी हो। अब एक लास्ट सुंदर बात आपको कहना चाहता हूँ, अब सभी अपने मन में ये संकल्प करें। ये बहुत सुंदर बात है, सुंदर इसलिए ये मुझे बहुत सुख देती है, दे रही है। सभी संकल्प करें, भगवान ने हमें किसी महान कार्य के लिए चुना है, ठीक है ना? अब हमें अपने को तैयार करना है उस काम के लिए जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, जिसके लिए बाबा ने हम पर दृष्टि डाली है, जिसके लिए उसने हमें शक्तियां और वरदान दी हैं, मिले हैं सबको। जो स्वीकार करे वो उनके पास हैं, जो स्वीकार न करे उनके पास नहीं है। समझ गए ना? सबको मिले हैं, जिसने स्वीकार कर लिया, जो उस फीलिंग में आ गए, जो उस नशे में रहने लगे, वो उनके लिए वरदान हैं, और जिन्होंने उनको समझा नहीं वो उससे खाली हैं। तो सभी बहुत अच्छा चिंतन करें, अब हमें वो काम करना है जिसके लिए हमें बाबा ने ये अलौकिक जन्म दिया है, जिसके लिए उसने हमें शक्तियां और वरदान दिए हैं, जिसके लिए उसने हमें पाला है। माताएं क्या कहती हैं अपने बच्चों को, अब वो करो जिसके लिए मैंने तुम्हें पाला था, कहती हैं या नहीं? बाबा भी हमें कहता है अब तैयार हो जाओ, इस संसार को तुम्हें बहुत कुछ देना है, संसार में जो कुछ होने जा रहा है उसकी कल्पना हम में से किसी को भी नहीं, मुझे भी नहीं है, क्या क्या होगा विनाश में, हाहाकार के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देगा, समस्याओं और परिस्थितियों के अलावा कुछ भी दिखाई है, उनको आभास हो जाएगा कोई अपना नहीं है, सब साथ छोड़ गए। इसलिए जो मोह माया में है वो अपने को जरा सावधान करें, पालना करना अलग चीज है, फंस जाना बुरी बात है, पालना करें कर्तव्य, लेकिन अटक न जाएं। ऐसा नहीं किसी के मोह में हम जन्म जन्म के भाग्य को ही गंवा दें और जब हम इस संसार से जाएं तो हम खाली हों, कोई हमें साथ नहीं देगा, सबका अलग अलग साथ होगा। सुनी होगी ना अभिमन्यु की कहानी, अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, अर्जुन मोह में रोने लगा क्योंकि वो एक ही था पांडवों को जिसके कारण जिसका आगे चलना था उनका वंश। श्री कृष्ण ने उसके मस्तक पे हाथ रख दिया, ध्यान में चला गया अर्जुन, देखा आके रो के ऐसे करके लिपट गया अभिमन्यु, उसने अभिमन्यु ने हटा दिया, कौन तुम, ऐसा व्यवहार किया कि अर्जुन उसे देखने लगा, कहा मैं तुम्हारा बाप अर्जुन, कौन मेरा बाप, कौन अर्जुन, हटो यहां से, यहां ये रोना चिल्लाना नहीं होता, जाओ जहां से आए हो। आंख खुल गई अर्जुन की, अरे ये मोह नीचे तक था, मैं जिससे मोह कर रहा हूं मुझे पहचानता भी नहीं, यही होगा सबके साथ, इसलिए कहीं भी उलझना नहीं है। तो सभी चिंतन करेंगे, अब हमें वो करना है, अपने को तैयार करना है जिसके लिए बाबा ने हमें पाला है। ओम शांति।